हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। रात के करीब 9 बजे निमानी हाउस के डाइनिंग एरिया में सब लोग डिनर कर रहे थे। रितेश और जिग्नेश अपनी बातों में लगे थे, राधिका और माधवी अपनी बातों में। निवेदिता जी अपने रूम में डिनर कर रही थीं क्योंकि कई दिनों से उन्हें अपनी छोटी बहू की बहुत याद आ रही थी और पहले दिन जब उन्होंने अकेले डिनर किया था, सबके साथ होने के बावजूद उन्हें डाइनिंग टेबल पर अकेला ही महसूस हो रहा था और उन सब से बचने के लिए निवेदिता जी ने बीमारी का बहाना बना लिया और विवाह के जाने के दूसरे दिन से ही वो अब रूम में डिनर कर रही थी। अनाही बार बार चोर नज़रों से रूहान को देख रही थी, जिसने आज एक बार भी पलके उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा था, जो अनाही के लिए काफ़ी नया था। वहीं वेदांत तो विवाह के ख्यालों में इतना गुम था, उसे तो पता भी नहीं था डाइनिंग एरिया में बैठा कौन कौन है। तभी अचानक बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है और सबका ध्यान एक साथ ही एक दूसरे की बातों से हटकर बाहर की तरफ चला जाता है। वेदांत आंखें छोटी करते हुए बोलता है, क्या कोई गेस्ट आने वाला था आज? हम सब तो यहीं हैं, बाहर से गाड़ी रुकने की आवाज़ आ रही है। अनाही ने भी कन्फ्यूजन में कहा, मुझे भी नहीं पता इस बारे में। फिर सबने राधिका, माधवी, रितेश और जिग्नेश की तरफ देखा, पर उन चारों ने भी भावे कुछ खाते हुए कहा, नहीं, हमने तो किसी को नहीं बुलाया, बस रूहान था जिसको पता था कि आज विवाह आने वाली थी। सब लोगों का ध्यान अब खाने से छूटकर दरवाजे पर ही अटक चुका था कि तभी विवाह मुस्कुराते हुए अपने हाथों में एक बॉक्स लिए अंदर आई। उसकी पीठ पर उसका बैग टंगा हुआ था। एक हाथ में बॉक्स था और दूसरे हाथ में उसने सूटकेस पकड़ रखा था। उसे देखकर बाकी लोगों का पता नहीं, लेकिन वेदांत के हाथ से खाना जरूर छूटकर गिर चुका था। वो हदें बढ़ाते हुए अपनी चेयर से उठा और लगभग तोड़ते हुए उसके पास गया और अचानक ही उसे उसी तरह गले लगाते हुए बोला, थैंक गॉड टमेटो, तुम वापस आ गई। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ इंसान हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। विवाह के लिए ये बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी। उसके दोनों हाथ बुक थे, इसलिए ना तो वो उसे खुद से दूर कर पा रही थी और ना ही उसे वापस गले लगा पा रही थी। वहीं वेदांत को जैसे सुकून आया था, विवाह की वो सोने से खुशबू अपने पास महसूस करके और सिर्फ उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, प्लीज कभी भी इतनी दिनों के लिए अपने घर मत जाना, वरना मेरा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। वो ये सब कुछ बहुत धीरे धीरे बोल रहा था, जिससे ज्यादा तो नहीं पर हल्की आवाजें ही डाइनिंग टेबल तक पहुंच पा रही थीं। सब लोगों के लिए ही ये थोड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। सबने अपनी नज़रें उन दोनों से हटा ली थीं, जिसके बाद विहा ने धीरे से लेकिन गुस्से में कहा, वेदांत आप क्या कर रहे हैं? सब लोग आप ही को देख रहे हैं, पागल हो गए हैं क्या? अपने हाथ हटाइए मेरी कमर से। विहा की आवाज़ सुनकर वेदांत को होश आया कि वो अभी अभी क्या कर रहा था। उसको हड़बड़ाकर विहा से अलग हो गया और अपनी बेसों नज़रों से विहा को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। विहा ने फिर उसे आंखें दिखाते हुए कहा, दिख नहीं रहा, मेरे हाथ में इतने सारे सामान हैं, ले लो, कुछ तो हेल्प ही कर दो मेरी। वेदांत ने उसके हाथ से सूटकेस लिया और उसके कंधे से भी बैग उतार लिया। विहा ने फिर उसे बॉक्स को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और एक सुकून भरी सांस लेते हुए बोली, आज तुम्हें बहुत ज्यादा थक गई हूँ। इतना बोलकर विहा ने मुस्कुराकर एक बार सबको गुड इवनिंग विश किया और फिर अंदर जाने लगी। माधवी का मानो पूरा खून जल चुका था इस बिछड़े कपल के 10 मिनट के मिलन को देखकर। कहीं कमरे में जाते ही विहा ने अपने हाथ में पड़ा बॉक्स टेबल पर रखा और बेड पर जाकर गहरी सांस लेते हुए धाम से पीछे की तरफ गिर गई। उसके दोनों पैर बेड से नीचे लटक रहे थे तो वो खुद आधी लेटी हुई थी। उसे ऐसे देखकर वेदांत ने जल्दी से सूटकेस और बैग को साइड में रखा और उसके पास जाकर उसके पैरों से जूती निकालते हुए बोला, तुम आने वाली थी, मुझे पहले बता देती, सफर में परेशानी नहीं होती, मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाता, ऐसे अकेले? विहा झटके से उठकर बैठते हुए बोली, मेरे पैरों को मछुआरे, और दूसरी बात, मैं आ गई हूँ, इस बात से आप खुश नहीं हैं क्या? वेदांत ने उसके गोरे पैरों को देखते हुए कहा, काश तुम मेरे चेहरे की खुशी देख पाती, अब मैं खुद से तो क्या बयां करूं कि मैं कितना खुश हूं और कितना दुखी हूं। इतना बोलकर वो वहां से उठा और टेबल से एक ग्लास पानी का ले तो वो विहा के हाथों में थमा दिया। विहा ध्यान से नोटिस कर रही थी, वेदांत उसे लड़ते हुए भी उसका ख्याल रखना बिल्कुल नहीं भूल रहा था। उसने पानी पीते हुए ग्लास वापस वेदांत को देकर कहा, हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी। वेदांत अपनी जगह पर रख चुका था, वो हैरानी से विहा को देख रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि विहा सिर्फ इसलिए यहाँ आ सकती है क्योंकि आज उसकी शादी को एक महीना पूरा हुआ था। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम इसलिए यहाँ आई हो? विहा ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, गरकर वेदांत को देखा। वेदांत हड़बड़ाकर उसके पास बैठते हुए बोला, क्या हुआ, अब क्यों रो रही हो? थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना करने के लिए। विहा ने आंखें छोटी करके वेदांत को घूरते हुए कहा, और आप, अपने कुछ नहीं किया मेरे लिए? अरे, आपने तो अभी भी सेम टू यू नहीं बोला मुझे। इतना बोलकर विहा ने वेतन से अपनी नजरें फेर ली तो वेदांत तुरंत ही उसके हाथों को पढ़कर प्यार से बोला, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। विहा ने एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, परेशानी नहीं हो रही है, एक मुसीबत को गले लगाया है आपको, पूरा एक महीना हो गया है और अगर आपका बर्ताव ऐसा ही रहा तो ये मुसीबत पूरी जिंदगी रहने वाली है। वेदांत ने मुस्कुराते हुए उसके हाथों को अपने होठों से हल्के से छूटे हुए कहा, आई डोंट केयर, बाहर से तुम सबको मुसीबत लगती हो पर मुझे ही पता है ये खाली कमरा मुझे कितना काटने को दौड़ता है। तुम्हारे आने के बाद तो जैसे हर दिन एक्साइटेड हो जाता हूँ। मैं बस यही सोचता हूँ आज मैं तुम्हें किस चीज़ के बारे में लेक्चर दूंगा और तुम उसे सुनकर किस तरीके से रिएक्ट करोगी, ये सब मेरे लिए बहुत खूबसूरत है। विहा के गाल लाल हो चुके थे। वेदांत के होठों को अपने हाथों पर महसूस करके उसने शर्माते हुए अपने हाथ वेदांत के हाथों से अलग किया और फिर पलके झुकते हुए बोली, ऐसे तो आप मुझे सर पर बैठा लेंगे, फिर तो मैं और भी ज्यादा परेशान करूंगी। वेदांत आहिस्ता से उसके करीब आया और अगले ही पल उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, सब मंजूर है बच्चा, बस मुझे छोड़कर मत जाना। इतना बोलकर इस बार वेदांत ने आहिस्ता से उसके बालों को चूम लिया और फिर उसे बॉक्स की तरफ देखते हुए बोला, उसके अंदर क्या है, बहुत संभाल कर लेकर आई हो क्या? तुम्हारी मम्मी ने कुछ स्पेशल बना कर दिया है तुम्हें? विहा ने अपना निचला होंठ काटकर अपने मन में कहा, जिंदगी में पहली बार किसी को कोई तोहफा दूंगी, बस इनको पसंद आ जाए। वेदांत ने उसे ऐसा करते देखा तो अपना हाथ बढ़ाकर उसके होंठ को उसके दांतों तले से निकालते हुए बोला, होंठ छिल जाएंगे, बताओ मुझे क्या है उसे बॉक्स में? विहा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, वो तो मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई थी। उसकी ये बात सुनकर वेदांत हैरान रह गया और जल्दी से उसे बॉक्स की तरफ देखते हुए बोला, रियली, मेरे लिए? क्या मैं अभी खोल सकता हूँ? वेदांत बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था, जिसे देखकर विहा का और भी ज्यादा दिल घबरा रहा था कि वेदांत इतना एक्साइटेड होकर उसे बॉक्स को खोलेगा लेकिन उसके अंदर के तोहफे को देखकर कहीं वो डिसअपॉइंट ना हो जाए। वेदांत उठकर उसे बॉक्स के पास गया ही था कि इतने में उनका डोर लॉक हुआ।
वेदांत ने गहरी सांस ली और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा खोला तो सामने सर्वेंट खड़ी थी, जिसके हाथों में वेदांत और विहा दोनों के लिए डिनर था, क्योंकि वेदांत ने भी बीच में ही खाना छोड़ दिया था।